भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 4 श्लोक नंबर 37। कृपा करके मेरे पीछे श्लोक आवृत्ति कीजिए। न्यस्त क्रीड नको बालो जडवत्तन मनस्तया कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम्। न्यस्त क्रीडनको बालो जडवत्तन्मनस्तया कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा वेद जगदीदृशम्। न्यस्त्र कीर्तन को बालो जडवत्तन मनस्तया कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम्। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री भक्ति विदान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा पतित पावन महाभागवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की। न्यस्त त्याग करके क्रीड न कह सभी प्रकार के खेल कूद या बचपन में खेल की प्रवृत्ति। बालह बालक जड़वत आलसी की तरह बिना किसी गतिविधि के तत्मनस्तया कृष्ण में पूर्णतया लीन होने से कृष्ण ग्रह कृष्ण के द्वारा जो कि प्रबल प्रभाव के तुल्य ग्रह के समान है। गृहीतात्मा जिसका मन पूर्णतया आकृष्ट है नहीं वेद समझ पाया जगत संपूर्ण जगत संपूर्ण भौतिक जगत ईदृशम इस तरह का। अनुवाद मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए उसके बाद इसको दोहराइएगा। अपने बाल्यकाल के प्रारंभ से ही प्रहलाद महाराज को बालकों के खेल कूद से अरुचि थी। निसंदेह उन्होंने उन सबका परित्याग कर दिया था और कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन होकर शांत तथा जड़ बने रहते थे। चूंकि उनका मन सदैव कृष्ण भावनामृत से प्रभावित रहता था, अतः यह नहीं समझ सके कि यह संसार किस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में निमग्न रहकर आगे बढ़ता है। कृपया इस अनुवाद को दोहराइए। अपने बाल्यकाल के प्रारंभ से ही प्रहलाद महाराज को बालकों के खेल कूद से अरुचि थी। निसंदेह उन्होंने उनका सबका परित्याग कर दिया था और कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन होकर शांत तथा जड़ बने रहते थे। चूंकि उनका मन सदैव कृष्ण भावनामृत में प्रभावित रहता था, अतएव यह नहीं समझ सके कि यह संसार किस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में निमग्न रहकर आगे बढ़ता है। हरे कृष्ण। तो हम लोग कथा सुनते आ रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज को भगवान के शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज जी के चरित्रों का गान उद्धृत कर रहे हैं नारद जी। नारद जी यह वर्णन कर रहे हैं कि प्रहलाद महाराज के अंदर कौन कौन से विकसित गुण थे। तो हम लोग प्रहलाद महाराज की विशेषता लगभग चार पांच पिछले श्लोकों से सुनते आ रहे हैं, जिसके अंदर एक श्लोक के अंदर पिछले वाले श्लोक में बताया गया है प्रहलाद महाराज की विशिष्ट गुण की, न उद्विग्न चित। देखिए, भक्त की जो विशेष गुण है उसमें यह प्रथम है कि न उद्विग्न चित, किसी भी प्रकार के विघ्न आने के बाद जिसका चित विचलित न हो। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि प्रहलाद महाराज के साथ क्या अत्याचार नहीं किया गया, लेकिन क्या उन्होंने कभी भी अपने पिता से क्षमा याचना नहीं की, क्षमा मांगा नहीं कि मुझे छोड़ दो, क्योंकि उन्हें एकमात्र विश्वास था भगवान के ऊपर कि जिसने हमें जन्म दिया है वो पूर्णतः उसकी जिम्मेवारी है, वो हमारी रक्षा करेगा। क्योंकि यह है एकाकी भक्ति। हम लोग इतना सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, तथा कथित कुछ हम लोग साधना में लगे भी हुए हैं, लेकिन कितनी पूर्ण विश्वास है अपने हृदय की आंकड़ा हम लोग अपने आप लगा सकते हैं। उनके विशिष्ट गुणों का वर्णन है प्रहलाद जी के कि न उद्विग्न चित, उनका चित कभी उद्विग्न नहीं हुआ। दूसरी विशेषता बताया गया कि व्यसनेशु, व्यसन से गलत आदत की संकेत की जा रही है। अगर जिसकी आदतें गलत पड़ जाती है तो उस इच्छा की पूर्ति किए बिना वो रह नहीं सकता, लेकिन इनकी ऐसी स्थिति नहीं थी। इनकी ऐसी व्यसन थी, इनकी ऐसी आदत थी कि संसार की तरफ उन्होंने मुड़ करके देखा है। आज के श्लोक में आया है अंतिम शब्द में कि ईदृशी, इस जगत के, भौतिक जगत के प्रति उन्होंने देखा ही नहीं कि क्या है। क्योंकि और यह शब्द व्यसन शब्द है, अगर इसको अगर हम लोग सुधार लें, अगर हम अपनी आदतें सुधार लें, गलत संगति से हम अगर बचने का प्रयास करें, तो निश्चित से हमारा जीवन सुधरा हुआ है। लेकिन हम लोग मधुमक्खी की तरह अन्य जगह के अन्य लोगों की विभिन्न प्रकार की बातों को सुन करके हम उद्विग्नचित हो जाते हैं। इसलिए यहां प्रहलाद जी के चित्त के विषय में बताया जा रहा है कि न उद्विग्न चित्त। न शब्द व्यसन से भी पहले ले गया, न व्यसन, उनकी गलत कोई आदत नहीं थी। निष्प्रिय शब्द लगा है, न कोई उनकी चाह थी, एक ही चाह उनकी थी। यह कह सकते हैं कि कृष्ण के प्रति उनकी एकाकी निष्ठा थी, और यही गुण हम लोगों को विकसित करना चाहिए। भक्त का चरित्र भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ में क्यों रखा जाता है? क्योंकि लगभग भगवान के समान ही एक शुद्ध भक्त की आदतें होती है, उनका गुण होता है, उनका स्वभाव होता है। इसलिए प्रहलाद जी के चरित्रों को सुनने के बाद मेरे गुरु महाराज तो कहा करते हैं कि अगर अपने भक्ति को मापना है तो भक्ति के थर्मामीटर प्रहलाद महाराज है। उनकी हृदय की भक्ति से हम अपने हृदय की भक्ति को माप सकते हैं कि हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। आज के श्लोक में आया है कृष्ण ग्रह ग्रसित, कृष्ण रूपी ग्रह ने उनको ग्रसित कर लिया है। जैसे हम लोग इस संसार में देखते हैं कि अगर किसी के प्रति किसी ग्रह का, किसी के ऊपर अगर किसी ग्रह का प्रकोप हो जाता है तो वह विचलित रहता है, लेकिन प्रहलाद महाराज को ऐसे ग्रह ने पकड़ रखा है, कृष्ण ग्रह ग्रसित, कृष्ण रूपी ग्रह के द्वारा ऐसे ग्रसित किए जा चुके हैं कि उनको किसी भी प्रकार की विघ्नता का अनुभूति नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनकी कृपा है। हम लोग श्लोक पढ़ चुके हैं, रुक्मिणी किशोर प्रभु जी क्लास लिए थे, प्रशांतस्य, जो नारद जी की कहने से पहले नारद जी जो सुना रहे थे कृष्ण महाराज को प्रहलाद महाराज के विषय में, पहला गुण उनका आया था प्रशांतस्य प्रकृष्ण रूपेण शांत। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री गौर निताय की, गौर हरि ब्रह्मानंद। तो हम लोग इस परम भक्त की, परम भागवत की हृदय की चरित्री का अध्ययन कर रहे हैं कि उनका स्वभाव, उनका चाल, उनकी आदतें, उनके अंदर किस प्रकार की भावना थे, ये सब हम सुनते आ रहे हैं। कल जो क्लास जीतामृत प्रभु दिए थे उसमें आया था अलम और असंख्यम। जैसे भगवान के बहुत से विशेष गुण हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, असंख्य है, वैसे ही एक पर्व भागवत के अंदर इतने गुण होते हैं कि उनके गुणों की गणना हम नहीं कर सकते, क्योंकि भागवत कहता है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनके अंदर लगभग भगवान की सारी योग्यता आ जाती है। हम लोग सुनते हैं कथा में भगवान राम ने, भगवान राम के नाम की महिमा हनुमान जी ने बताया रामचरितमानस के अंदर। जब समुद्र में पुल बांधा जा रहा था तो जिस पत्थर पर राम नाम लिख दिया जाता था वो पत्थर तैर रहा था, लेकिन भगवान राम ने हनुमान के समक्ष एक पत्थर उठाया और समुद्र में डाला, वो पत्थर डूब गया। तो हनुमान जी से भगवान राम ने पूछा, हनुमान यह क्या हो गया, आप लोग जो डाल रहे हो पत्थर तैर रहा है और मैंने डाला वो पत्थर डूब गया। हनुमान जी ने उत्तर दिया कि भगवान अगर आप जिसको छोड़ दें वो डूबेगा नहीं तो और क्या होगा। और तैरने का खास कारण है कि इस पत्थर के ऊपर आपका नाम लिखा होगा, उस नाम को हम लेने का प्रयास करते हैं, उस नाम को हमें गुरु महाराज लोगों ने दिया है, किस तरह से और कितनी सार गंभीरता के साथ उसको लेना है यह हम विचार कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं उन श्लोकों के ऊपर, दो तीन श्लोक मैं ले रहा हूं क्योंकि जब तक हम लोग इन श्लोकों के शब्दार्थ को नहीं समझेंगे तब तक श्लोक पढ़ करके भी हम श्लोक का अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अनुवाद में कहीं कहीं प्रभुपाद ने ऐसा ऐसा शब्द लिखा है कि वो शब्द श्लोक के अंदर नहीं है लेकिन असली भाव को प्रभुपाद ने खोल दिया है। अगर इनके स्वभाव को देखा जाए प्रहलाद महाराज जी को तो एक श्लोक में और आया है, श्लोक नंबर 35 के अंदर, रिपव क्योंकि प्रहलाद जी ऐसे शुद्ध भक्त थे कि उनके कोई भी उनका कोई दुश्मन नहीं था, जबकि देखा जाए तो सबसे बड़े दुश्मन उनका पिता ही था। चाणक्य पंडित ने लिखा है अपने चाणक्य नीति में कि रीढ़ कृत्वा पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी रूपवती भार्या शत्रु पुत्र शत्रु अपंडिता। ये चार शत्रु तो अपने घर में ही रहते, किससे हम बचेंगे, लेकिन फिर भी शुद्ध भक्त अपने को बचा लेते। संसार वाले अपने भाग दौड़ कर रहे हैं, भक्त अपना भाग दौड़ कर रहा है, हमें अपने व्यसन को अपने आदत को सुधारना है, अपनी सुधार सबकी सुधार। हम लोग चाहते हैं अपने मुट्ठी में करके हम सबको सुधार देंगे, अरे खुद सुधर जाओ तुमको देख करके कोई सुधर जाएगा। क्योंकि भक्ति स्वतंत्र की जाती है, भक्ति करने के लिए जीव स्वतंत्र है। गुरु के संरक्षण में गुरु के आदेश का पालन करते हुए जो भाव उसके हृदय के अंदर उदित होता है उसको ग्रहण करके उस पथ पर चल सकता है। इसलिए सबसे बड़ा शत्रु जो घर में है उनसे भी हमें सावधान, क्योंकि ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि किसी के पास ये शत्रु नहीं है। लेकिन शत्रु के साथ में भी शत्रु मानना ही, जिस प्रकार की इनकी भाव है प्रहलाद जी की कि हमारा कोई शत्रु नहीं है, उनको शत्रु न मान करके दूसरे दिशा में परिवर्तित करो। लोग कहते हैं कि घर गृहस्थी भार है, बंधन का कारण है, लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर जिसके पास अगर कुछ न हो, अगर भक्ति करके वो अपने को शुद्ध करने का प्रयास कर रहा है तो उससे वह अच्छा है। जो सारे गृहस्थ रूपी जंगल को लेकर के और भक्ति की तरफ मुड़ने का प्रयास कर रहा है वह श्रेष्ठ है, क्योंकि वो सबको मुड़ने का प्रयास कर रहा है। प्रभुपाद जी अगर ऐसे भाव रखते तो वृंदावन छोड़ करके विदेश भी नहीं जाते, नहीं उधार हुआ होता। इस और आज के श्लोक में, कल जो प्रभु जी ने श्लोक लिया था नैसर्गिक रति श्लोक के अंदर एक लास्ट शब्द आया है, नैसर्गिक रति शब्द का अर्थ लोगों ने लिखा है विद्वानों ने कि जिनका जन्मजात स्वभाव था कृष्ण भक्ति करना। आप सोचिए कल जीता मित्र सुना रहे थे कि 36,000 वर्ष तक कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जी रहे और 36,000 साल तक नारद जी ने कयाधु को जिसके पेट में प्रहलाद जी थे उनको कथा सुनाए, लेकिन 36,000 वर्ष सुनने के बाद भी कयाधु के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन प्रहलाद जी सारी तत्व को उन्होंने ग्रहण कर लिया। यह नैसर्गिक रति जन्मजात उनकी भक्ति थी, स्वाभाविक ही भक्ति थी। हम लोग पढ़ते तो है कि जीवे रे स्वरूप है नित्य कृष्णदास, लेकिन केवल तोते की तरह लड़ते हैं, रटते हैं। उस स्वभाव को तो पकड़े, जानने के बाद भी हम लोग कुछ कहते भी है लेकिन दूर रहने का प्रयास करते हैं। प्रहलाद जी की स्थिति यह थी कि उनकी नैसर्गिक रति थी, कृष्ण में उनका मन पूर्ण रूप आसक्त था और आज के श्लोक से तो हम लोग और स्पष्ट समझ सकते हैं कि जो बालक है, जो अर्भक है, स्वभावतः वह देखा जाता है कि कोई भी वस्तु उसको दे दीजिए तो उससे वो खेलने का प्रयास करता है या मुख में खाने का प्रयास करता है। कोई भी चीज दे दीजिए वो मुख में डाल लेता है। लेकिन प्रहलाद जी की बचपना देखिए, उनकी बाल्यावस्था देखिए कि न्यस्त क्रीडनको, बालकों के साथ खेलने कूदने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। जबकि बालक का बालवत स्वभाव है तो वह खेल कूद में ज्यादा रुचि रखता है, लेकिन इनकी खेल कूद कृष्ण के साथ थे, कृष्ण भक्ति के साथ थे। इसलिए संसारिक खेल कूदों से दूर रहने का प्रयास किया, क्योंकि बाल शब्द से यह संकेत होता है कि बालवत जो क्रीड़ा होती है या बालवत जो स्वभाव होता है वह खेल में रुचि लेने का। लेकिन प्रहलाद जी का स्वभाव था कि न्यस्त क्रीडनको, माने उन्होंने बचपन में जो खेल कूद के अंदर जो रुचि होनी चाहिए उसका उन्होंने न्यस्त कर दिया था, त्याग कर दिया था। जड़वत शब्द का अगर साधारण अर्थ लिया जाए तो पागल की तरह, न बोलना, न चालना, न सुनना, न कुछ कहना। क्योंकि संसारिकता के प्रति उनकी कोई रुचि ही नहीं थी तो बोले क्या, उनके पास संसारिक शब्दों को कहने के लिए वाक्य ही नहीं था, जीवा ही नहीं थी। सबसे बड़ी विशेषता इस श्लोक के अंदर यह बताया गया है कि कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा है, क्योंकि कृष्ण रूपी ग्रह ने प्रहलाद जी के हृदय को ग्रसित कर लिया था, जिससे उनकी सारी संसारिकता की जो रुचि थी को मिट चुकी थी। हम लोग भी ऐसी प्रार्थना भगवान से करें, गुरु से ऐसी प्रार्थना करें, साधुओं से प्रार्थना करें कि कृष्ण ग्रह जो है वो हमें भी ग्रहित कर ले। क्योंकि अगर हम प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से कृष्ण का स्वभाव है, कृष्ण पकड़ना जानते हैं, किसी को छोड़ना नहीं जानते। अगर हम प्रार्थना करेंगे, उनसे विनती करेंगे तो कृष्ण ग्रह रूप पंजे में हम आ सकते हैं। आप सोचिए जिसको कृष्ण कृपा ने ग्रसित कर लिया है, ये संसारिक जो ग्रह है वो क्या बिगाड़ पाएंगे उनका। इसलिए इस ग्रह को जो कृष्ण ग्रह है उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग प्रहलाद महाराज के जीवन चरित्र को आगे भी पढ़ेंगे कि इतना अनाचार अत्याचार और दुष्टता करने के बावजूद भी प्रहलाद महाराज ने अपने पिता के उद्धार हेतु उन्होंने एक श्लोक में कहा कि मुझे अपने उद्धार की कोई चिंता नहीं, मुझे अपने उद्धार की कोई चिंता नहीं है, लेकिन हे नरसिंहदेव मैं आपसे यह प्रार्थना जरूर कर रहा हूं कि मेरा यह पिता जीवन पर्यंत आपसे द्वेष किया, आपसे ईर्ष्या किया, लेकिन आप इनके ऊपर कृपा करना। अब सोचिए जो व्यक्ति हमको जीवन भर सताया हो और उसको कोई मार दे तो हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे? हम तो कहेंगे भला अच्छा हुआ, हमारा भला चला गया। लेकिन इसी से यह आंकड़ा लगाई जा सकती है कि प्रहलाद जी की स्थिति क्या थी, क्योंकि एक भक्त एक श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी पीछे लिखते हैं युधिष्ठिर महाराज से, क्योंकि नारद जी युधिष्ठिर से वार्तालाप कर रहे हैं तो कह रहे हैं नारद जी ये युधिष्ठिर जहां विद्वान लोग इकट्ठे होते हैं, जहां साधु पुरुष इकट्ठे होते हैं, वहां साधु गाथा के विषय में अगर वर्णन किया जाता है तो प्रहलाद जी के चरित्र का विशेष रूप से वर्णन किया जाता है कि प्रहलाद ऐसा शुद्ध भक्त है कि उसकी बराबरी का कोई भक्त नहीं होगा। यहां तक कि प्रभुपाद जी ने यहां तक भी लिखा है कि असुर और देवता लोग भी अगर आपस में चर्चा करते हैं तो उदाहरण स्वरूप देते हैं कि प्रहलाद जैसा कोई भक्त नहीं हुआ। यह स्थिति है। तो ऐसे भक्त के जीवन चरित्र को पढ़ करके, उनकी शिक्षाओं को सुन करके हम लोग भी भक्त बन सकते हैं। जब प्रभुपाद जी ने जब ऐसा लिखा कि मैं शुद्ध भक्त अभी बनने के लाइन में हूं, तो हम लोग यह इंगित करने का प्रयास न करें कि हम बहुत शुद्ध भक्त बन गए, क्योंकि जब तक इस प्रकार की दैनता नहीं आएगी और इस प्रकार की भाव नहीं आएगी तब तक तो हम लोगों के अंदर इतने अहंकार कुट के भरा हुआ है तो निकल ही नहीं पाएगा। इसलिए इन चीजों को समझने के लिए अपने को और कहीं रुचि बढ़ानी है, भागवत पढ़ने में, कथा सुनने में, नाम जप करने में। हमारे पास कोई टाइम नहीं है कि हम और कुछ करें। मेरे गुरु महाराज खास करके कई बार लोग जीबीसी मीटिंग में मेरे महाराज को बुलाते थे कि नहीं आप आइए कुछ जिम्मेवारी संभालिए, आप कुछ जिम्मेवारी अपने ऊपर लेकर के किसी सेंटर को संभालिए। महाराज ने कहा सबसे बड़ा जिम्मेवारी प्रभुपाद ने हमें दिया है कि ब्रह्मचारियों को जीवन को कथा सुना सुना करके पालन करना, भागवत पढ़ा सुना करके उनके जीवन को बचाना, और मैं पूर्ण जिम्मेवारी पूर्वक करने का प्रयास करता हूं कि यह जिम्मेवारी प्रभुपाद की कृपा से पूरी होती रहे। क्योंकि सबसे बड़ी अपनी जिम्मेवारी है कि हम खुद शास्त्र के अध्ययन में लगे और उसको यथावत वैसे ही प्रस्तुतिकरण करके किसी दूसरे को हासिल करा दें। क्योंकि रस जो है भागवत के अंदर ऐसा है कि जो एक बार उस रस को ले लेता है वो कहीं भी रहेगा, उस रस से वंचित नहीं हो पाएगा। इसलिए इन सब चीजों को, इन सब चरित्रों को हम प्रहलाद के चरित्र से अपने ऊपर थोड़ा ट्रांसफर करने का प्रयास करें कि हमारी स्थिति क्या है। लेकिन कितना भी हम बिगड़े हों, लेकिन अगर प्रार्थना करें और इस प्रकार की स्तुति करें तो निश्चित रूप से कृष्ण रूपी ग्रह हमें ग्रसित करेंगे, क्योंकि उनको आना पड़ेगा, वो मुझे छोड़ नहीं सकते, केवल हम प्रयास करें। न्यस्त क्रीड नको बालो जड़वत तन मनस्तया, ऐसा तन्मय होकर के, ऐसा पागल होकर के हम कृष्ण भक्ति करें कि कृष्ण रूपी ग्रह हमें ग्रसित कर ले। वास्तविक स्थिति यही है कि भक्ति करने वाला भक्ति में वो पागल होता, कहीं भी अकेला बैठा रहता है वो कुछ हंसेगा, कभी कभी ऐसे गंभीर हो जाएगा, कुछ ऐसा संसारिकता से अलग व्यवहार करेगा कि हम उस बात को समझ नहीं पाएंगे। यह है भक्ति का पागलपन, क्योंकि कृष्ण रूपी ग्रह ने जिसको ग्रसित कर लिया है, जिसके ऊपर ग्रह का प्रकोप होता है, वो चाहता है कि हम कुछ विकास करें, कुछ आगे बढ़े, लेकिन वो ग्रह का प्रकोप उसे आगे बढ़ने नहीं देता। वैसे ही कृष्ण रूपी ग्रह ने प्रहलाद जी को ऐसे ग्रसित किया है कि संसार क्या है उसको नहीं समझ पाए, उससे दूर रहे। अच्छा हुआ भगवान की कृपा की कम से समझ नहीं पाए संसार को, नहीं तो भी हिलते, बड़े बड़े यति योगी हिल जाते हैं संसार में। अब इस संदर्भ में प्रभुपाद जी जो तात्पर्य लिखे हैं और अति गंभीर है, क्योंकि जो उनका स्वभाव है प्रभुपाद के हृदय के भी भाव को समझ सकते हैं इस तात्पर्य से, और प्रहलाद जी की तो चारित्रिक हम लोग सुन ही रहे हैं, वर्णन ही किया जा रहा है। क्योंकि लिख रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर श्रील प्रभुपाद महाराज की कि प्रहलाद महाराज ऐसे व्यक्ति के ज्वलंत उदाहरण हैं जो कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया निमग्न रहते हैं। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 8वें अध्याय के 274वें प्यार में कहा गया है कि अस्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। यह हृदय की भावना के पर्दे को खोला जा रहा है। जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है उसका स्वभाव क्या होता है, उसकी देखने की, चलने की, बोलने की प्रवृत्ति क्या होती है, वो महसूस क्या करता है, उसको यहां इस प्यार में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया है कि अस्थावर और जंगम जो चल और अचल जीव है, किसी को भी वो मूर्ति या शरीर के रूप में नहीं देखे, क्योंकि शुद्ध भक्त जो है वह कहीं भी देखता है तो वह कृष्ण को ही देखता है। हम लोग 11वें स्कंद के अंदर राजा निमि और नव योगेश्वरों की कथा पढ़ते हैं, जिसके अंदर दूसरे अध्याय के श्लोक के अंदर ही, दूसरे अध्याय के एक श्लोक के अंदर ही बताया गया है, उसमें नव योगेश्वरों में जो हवीर जी हैं उन्होंने कहा है राजा निमि से, शुद्ध भक्त का स्वभाव क्या होता कि सर्वभूते सुजह पश्यत भागवत भाव आत्मन भूतानि भगवत्यात्मन अन्येषु भागवतोत्तमम। जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है जब पश्चे तो भगवत आत्मा, जहां भी उसकी नजर जाती है, जहां भी उसकी आंखें पड़ती है, वहां जीवों में विराजमान कृष्णचंद्र ही उसके नजर आते हैं। सर्वभूतेषु जः पश्यत भगवत भावम आत्मना, जिस जीव को देखता है, जिसके ऊपर उसकी आंखें जाती है, उसके अंदर कृष्ण चंद्र ही उसे नजर आते हैं। और जब वहां से उसकी आंखें जाती है जीवों के शरीर के ऊपर, सर्वभूतेषु जः पश्यत भगवत भावम आत्मना, भूतानि भगवत आत्मन अन्येषु भागवतोत्तमम्, जब सब जीवों के ऊपर वो विचार करते हैं तो वहां भगवान नजर आते हैं, और भगवान के ऊपर वो ध्यान से देखते हैं तो सारे जीव उनके अंदर दिखाई देते हैं। यह है उत्तम भागवत के देखने के तरीके। तो उनकी नजर किस प्रकार की होती है? सब जीवों में भगवान को देखते हैं और भगवान में सारे जीवों को देखते हैं। कृष्ण का अनुभूति वो सर्वत्र करते हैं और कृष्ण में ही सारे जीवों की अनुभूति को देख लेते हैं। यह देखने की तरीका और उसी भाव की सांकेतिक भाषा में आप रूपा जी वर्णन कर रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त होता है, जो कृष्ण भावना भावित भक्त होता है, जहां भी देखता है उसके इष्ट देव नजर आते हैं। कदाचित यह भाव हम लोगों के हृदय के अंदर, खास करके आप लोगों की कृपा से अगर हमारे अंदर यह भाव आए कि हम अपने आराध्य देव इष्ट देव श्री राधा राधिका रमण को सर्वत्र देख सके, यह भाव उत्कृष्ट भाव। अगर हम कदाचित कभी मंदिर में नहीं आ पाए तो यह जरूर दिखाई दे, देखने की कृपा, दिखाई देने की दृष्टि दें कृष्ण, कि हम राधिका रमण को स्मरण कर सके कि किस मूर्ति में है, अरे किस भाव में वो खड़े हैं और वो क्या कर रहे हैं, इस दृश्य को हम देख सके। क्योंकि इष्ट देव की स्फूर्ति अगर भक्त के हृदय में हमेशा हो रहा है तो भक्ति से कभी वंचित नहीं होगा। जब उस हृदय के अंदर और किसी को बैठा लिया तब तो भगवान को वही वो भूल गया। इसलिए अपने इष्ट देव की स्फूर्ति के लिए सर्वत्र हम अपने ऐसे दृष्टि को बदले कि कृष्ण हमें नजर आए। सर्वत्र है नीच अपने जो इष्ट देव हैं उनका हम स्फुरण कर पाए। पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इस जगत में स्थित होकर भी कृष्ण के अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं देखता। यह महाभागवत का लक्षण है। वह सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण देखता है, क्योंकि कृष्ण के लिए उसमें शुद्ध प्रेम रहता है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णन है पांचवें अध्याय के 38वें श्लोक के अंदर, प्रेमांजन छ्रित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यमश्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषोत्तमं भजामि। यह भी देखने की दूसरी तरीका बताई जा रही है कि वही भगवान को भगवान के रूप में देख सकता है जिसके आंखों में प्रेम रूपी काजल हो। क्योंकि प्रेम के आंख से हम भगवान को देख सकते हैं, इस हाड़ और मांस के आंखों से हम भगवान को नहीं देख सकते। नहीं तो राधिका रमण जी ही मार्बल के पत्थर ही नजर आएंगे। पुजारी लोग अनुभव किए होंगे, भगवान को कभी पसीना होता है, भगवान के चरण को पकड़ने के बाद कुछ कंपन महसूस होता है, अपनी अलग अलग भावनाएं हैं वो जरूर अनुभूति करा देते हैं भगवान। क्योंकि अपनी अपनी प्रेम रूपी जितनी काजल हम लोग लगा चुके हैं उसके अनुसार उसकी अनुभूति हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका ब्रह्मा जी बताते हैं कि जिसके आंखों में प्रेम रूपी काजल है वही भगवान को देख पाएगा। जहां देखेगा वहां कृष्ण की कृपा नजर आएगी। हे कृष्ण, वही काजल इन आंखों में लगाना, वही कृपा इन आंखों में देना कि हम आपको यथावत देख सकें। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूं जो उस भक्त द्वारा देखे जाते हैं जिसकी आंखों में प्रेम का अंजन लगा हो। वे भक्त के हृदय में स्थित अपने नित्य श्याम सुंदर स्वरूप में देखे जाते हैं, ऐसा दुर्लभ महात्मा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होता है और वह अपने हृदय में भगवान का निरंतर दर्शन करता है। कभी कभी यह कहा जाता है कि यदि व्यक्ति पर शनि, राहु अथवा केतु जैसे बुरे ग्रहों का प्रभाव होता है तो वह किसी भावी कार्य में उन्नति नहीं कर पाता। प्रभुपाद जी कृष्ण ग्रह ग्रसित शब्द के ऊपर यह संकेत कर रहे हैं कि अगर ग्रह किसी को ग्रसित कर लेता है तो चाहते हुए वो विकास नहीं कर पाता, वैसे ही कृष्ण रूपी ग्रह ने प्रहलाद को ग्रसित कर लिया था जिसके चलते जगदी ईदृशम, जो जगत है, जो संसार है, भौतिक संसार है, उसको उस रूप में नहीं देख पाए प्रहलाद महाराज, क्योंकि कृष्ण रूपी ग्रह ने उनको ग्रसित कर लिया था। अतः ये भौतिक जगत के विषय में न तो सोच सकते थे, न कृष्ण भावनामृत के बिना जीवित रह सकते थे। यह महाभागवत का लक्षण है, भले ही कोई कृष्ण का शत्रु क्यों न हो, महाभागवत उसे भी कृष्ण की सेवा में संलग्न देखता है। यह तो आज के युग में बहुत ही बुरी देखने की तरीका है, किसी भी साधु को ऐसे बुरे नजर से लोग देखते हैं कि पता नहीं कि उसने उनका क्या बिगाड़ा। किसी संसारिक व्यक्ति को अगर साज सजावट को देख लेते हैं तो एक टक उसके तरफ देखते रहते हैं, लेकिन साधु को देखेंगे तो पता नहीं किस प्रकार नाक उत्पन्न ऊपर करते हैं कि लगता है कि उनका सब कुछ उसने ले लिया। अरे वो कितना भी बिगड़ा हुआ साधु हो, लेकिन तुम अपने हृदय को तो पवित्र रखो, अपनी सद्भावना तो ठीक रखो। तुम उसे साधु समझ करके प्रणाम करोगे तो तुम्हें एक शुद्ध भक्त को प्रणाम करने का जो फलश्रुति वो मिल जाएगा। तुम अपने भावना को क्यों बिगाड़ रहे? साधु शब्द का अगर अंततः अर्थ जो स्वरूपगत जो शब्द अर्थ है यही है कि जो अपने हृदय को साधु बना देता है। देखने वाला सामने वाला साधु है या नहीं है, लेकिन वो अपने हृदय को तो साधु बनाए। लेकिन हम लोग इस दृष्टि से देखते हैं इसलिए यहां विकास नहीं हो पाता। देखो संसार में भी लोग देखते हैं, देखो मगर प्यार से, उस दृष्टि से देखो, घृणा की दृष्टि से मत देखो। प्रभुपाद जी यहां एक उदाहरण देते हैं कि एक अन्य मोटा उदाहरण है, यह है कि पीलिया ग्रस्त आंखों को सब कुछ पीला दिखाई देता है। प्रभुपाद जी ने एक जगह एक श्लोक के तात्पर्य में लिखा है कि जो लाल चश्मा पहन लेता है ना उसको लाल दिखाई देता है, वैसे ही यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो पीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति है उसको सब कुछ संसार जो है वो पीला नजर आता है। इसलिए संसारिक लोग हों चाहे भौतिकतावादी हो, लोग अपनी देखने की दृष्टि ऐसे बना चुके हैं कि साधु को भी उसी नजर से देखते हैं। तुम अपने हृदय को साधु बनाओ। इसी प्रकार महाभागवत को अपने अतिरिक्त हर व्यक्ति कृष्ण की सेवा में संलग्न प्रतीत होता है। नारद जी युधिष्ठिर को कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इन श्लोकों के पीछे के अनुवाद में उन्होंने लिखा है, नारद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर जहां भक्त जैसे अरे प्रहलाद जैसे शुद्ध भक्त की चरितावली की व्याख्या की जाती है तो अंततः लोग इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि जैसे आप पहुंचते हो कि आपके जैसे अजात शत्रु आपको कहा जाता है, वैसे ही प्रहलाद जी का कोई शत्रु नहीं था। वो योग्यता आप में थी और प्रहलाद में थी। प्रहलाद महाराज जाने माने महाभागवत अर्थात परम भक्त हैं। पिछले श्लोक में बताया गया है कि उनमें नैसर्गिक अनुरक्ति थी, नैसर्गिक रति। इस श्लोक में कृष्ण के प्रति ऐसी नैसर्गिक रति के लक्षण वर्णित है। यद्यपि प्रहलाद महाराज अभी बच्चे थे किंतु उन्हें खेलने में कोई रुचि न थी। नैसर्गिक रति का मतलब कि बालक का स्वभाव, जन्मजात स्वभाव होता है, बचपना होती है, वह खेल में रुचि रखता है। लेकिन यहां प्रहलाद जी की स्थिति यह थी कि इनकी नैसर्गिक रति थी, बचपन से ही इनकी जन्मजात से ही इनकी जो स्वभाव थी वो स्वाभाविक भक्ति कृष्ण में उनकी मति लगी रही थी। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 2 अध्याय के 42वें श्लोक में कहा गया है, विरक्तिरस्य विरक्तिर अन्यत्र च। पूर्ण कृष्ण भावनामृत का लक्षण है कि मनुष्य सारे भौतिक कार्यकलापों में कोई रुचि नहीं लेता। एक छोटे से बालक के लिए खेल कूद छोड़ पाना असंभव है, किंतु प्रहलाद महाराज उत्कृष्ट भक्ति से स्थित रहने के कारण सदैव कृष्ण भावनामृत में सदैव कृष्ण भावनामृत की समाधि में लीन रहते थे। जिस प्रकार एक भौतिकतावादी सदैव भक्ति लाभ के लिए विचारों में खोया रहता है, उसी तरह प्रहलाद महाराज जैसा महाभागवत सदैव कृष्ण के विचारों में मग्न रहता है। तो जिस श्लोक को प्रभुपाद जी ने यहां उद्धृत किया है अनुवाद के अंदर, उस श्लोक को मैंने लिखा है 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 41वां श्लोक है कि भक्ति परेशान भव विरक्तेर अन्यत्र चैसे त्रिक एक कालह प्रपद्यमानस यथा श्रतः स्यु तुष्टि पुष्टि शूद्र पार्थो अनुपासम अनुघासम। जो व्यक्ति भक्ति के सारे साधनों को अपने जीवन में ग्रहण कर लेता है, अन्यत्र अन्य चीजों को ग्रहण नहीं करता, केवल भक्ति के साधनों को अपने जीवन में वो उतार लेता है, तो त्रिक एक काल एक ही समय में 3 काम पूरे हो जाते हैं। क्यों? भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, कृष्ण भावनामृत के देखने मात्र से उसके हृदय में पवित्रता आ जाती है, पवित्रता के साथ साथ कृष्ण की कृपा को लेकर के पूर्ण रूप से तुष्ट हो जाता है। तुष्टि पुष्टि और क्षुद्र पिपासा, 3 शब्द आया है इस श्लोक के अंदर। जैसे कोई भूखा व्यक्ति हो तो उसको अगर भोजन दिया जाता है तो जैसे पहला कौर लेता है, पहला ग्रास ग्रहण करता है, तो उसको अति आनंद की अनुभूति होती है। दूसरा बार, तीसरा बार जैसे वो ग्रहण कर दे जाता है तो पहले बार भूख उसकी तुष्टि होती जाती है, लेते लेते भोजन ग्रहण करते करते उसको पूर्ण रूप में पुष्टि हो जाती है, और लास्ट में क्या होता है कि लास्ट स्थिति यह होती है कि उसका जो भूख का जो रोग लगा हुआ था वो मिट जाता है, क्षुद्र पिपासा मिट जाती है। वैसे ही भक्ति के पथ पर चलने वाले व्यक्ति को कृष्ण प्रेम भी मिल जाता है, भक्ति भी मिल जाती है और भगवान की कृपा भी मिल जाती है। यह श्लोक भी नव योगेश्वरों में से कवि जी ने कहा है, क्योंकि ये योगेश्वर इसलिए उनको कहा जाता है कि ये योगी केवल एकाकी ईश्वर भक्ति करते थे। उनका नाम दिया गया है कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुध अपि पलायन आवि होत्र अथ द्रुमिल चमन कर भाजन। कवि हवीर अंतरिक्ष प्रबुध पिपलायन आवि होत्र द्रुमिल चमस और कर भाजन, इनके उद्गार को अगर 11वें स्कंद में अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एक कितने उत्कृष्ट भक्त थे। हम लोग एक भक्त के ही हृदय की चरित्री को हम लोग यहां अध्ययन कर रहे हैं, सुन रहे हैं नारद जी के मुखों से। और नारद जी जैसे गुरु हैं वैसे उनके शिष्य मिले। देख लीजिए कि उनकी शिक्षा में कोई कमी नहीं है, इसलिए प्रहलाद जी के अंदर कोई कमी नहीं है। उसको उस रूप में उन्होंने लिया, इसलिए देखने की अपनी और सुनने की प्रवृत्ति को हमें बदलना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि थोड़े हम सुने थोड़े पढ़े, लेकिन उसको हम विचार करें, पढ़ने के बाद विचार करें कि इसके गहराई में और क्या। मैं तो खास करके अभी इतना गिर चुका हूं कि मुझे इतने श्लोक याद 11वें स्कंद के थे, नौ योगेश्वरों के लगभग अधिकांशता उद्गार इनके मैंने याद किया था, लेकिन बहुत कुछ कहना चाह रहा हूं लेकिन पढ़ा नहीं, भूल रहा हूं मैं उस श्लोक को, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। इस ग्रंथ को अगर हम लोग पढ़ेंगे भागवत को और उनके उद्गार को अपने जीवन में उतारेंगे तो उत्साह मिलता रहेगा, हम अपने भक्ति पथ से विचलित नहीं होंगे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम के श्रील प्रभुपाद महाराज की गौर हरि ब्रह्मानंद।